परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमें विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन को हम आरंभ करें, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दूसरा तिमुथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि उसे भय नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा में भरपूर रहना है, और इतना ही नहीं वह यह भी बताता है कि उसे सुसमाचार से नहीं ला जाना है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दूसरा तिमुथियुस की पत्री उसके दो अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम तिमुथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। हम इसे प्रत्येक से अपने वचन के द्वारा आप बोले और बातचीत करें। हर एक प्रकार की चिंता, बीमारी, तकलीफ और बुराइयां हमारे जीवन से आप दूर करें ताकि हम बड़े सामर्थ्य में होकर आपके वचनों के अनुसार जीवन जी सकें। इस समय फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज के अध्ययन पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए दूसरा तिमुथियुस की पत्री दो अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं जिसका विषय है सेवा में सक्रिय। दूसरा तिमुथियुस का दूसरा अध्याय हर्ष का अध्याय है। इस अध्याय में विश्वासी के कर्तव्य और कार्यों को 7 अलंकारों द्वारा सजाया गया है और ज्यों ज्यों हम अंत समय के निकट आते जाते हैं त्यों त्यों यह हम पर अधिकाधिक प्रभाव डालते जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं पुत्र के बारे में। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। पौलुस पहले अलंकार का उपयोग करते हुए कहता है इसलिए हे मेरे पुत्र। तिमोथियुस शरीर के भाव से तो पौलुस का पुत्र नहीं था परंतु वह उसका आत्मिक पुत्र था। कहने का अर्थ यह है कि पौलुस के द्वारा ही उसने प्रभु यीशु के वचन को सुना और उसे ग्रहण किया था। परमेश्वर के संतान प्रभु यीशु में विश्वास करके ही परमेश्वर के परिवार में जन्म लेता है। अपनी पहली पत्री उसके अध्याय 1 पद 23 में प्रेरित पत्रस कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तिमोथियुस परमेश्वर के परिवार में है और परमेश्वर की संतान है। इसी कारण पौलुस तिमोथियुस से कहता है हे मेरे पुत्र। तब वह कहता है तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मेरे प्रियो मुझे यह अति मनभावन लगता है, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है। यदि आप दांत पीस कर सोचें कि अपने आप में मसीही जीवन जी सकते हैं तो आप घोर निराशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ छोटे मोटे नियमों और चतुर युक्तियों द्वारा परिपक्व विश्वासी हो सकते हैं तो आप विधि विधान के रहस्यमय जाल में फंस गए हैं। पौलुस कोई नियम नहीं बताता है और न ही परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की संतान के मसीही जीवन के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। मेरे प्रियो हम अनुग्रह द्वारा उद्धार पाए हुए हैं और अब हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही जीवन जीना है और बलवंत होते जाना है। अनुग्रह में बलवंत होना है। मैं अपने बचपन का एक उदाहरण आपको देता हूँ। मेरे पिताजी अपने काम के संबंध में बहुत यात्रा करते थे और इसके साथ साथ वे एक खिलाड़ी भी थे, इसलिए वे बाहर जाते थे। और जब वह घर से बाहर होते थे तब मेरे लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए जाते थे कि उनकी अनुपस्थिति में मैं उनका पालन करूं। कुछ नियमों का तो मैं पालन करता था, जैसे लकड़ी काटना या घर के कुछ काम करना। हमारे घर पर बहुत से पेड़ होते थे और मुझे जलाने के लिए लकड़ी काटना बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी ने कुछ अन्य नियम भी बनाए थे जो मुझे पसंद नहीं थे। उनमें से एक नियम यह भी था कि मुझे संडे स्कूल जाना है। अब रोचक बात तो यह है कि वह स्वयं तो जाते नहीं थे परंतु मुझे जाने के लिए कहते थे। परंतु जब वह घर से बाहर होते थे तब मैं संडे स्कूल नहीं जाता था। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए चला गया और वह अचानक ही वापस आ गए। मैंने अभी मछली पानी से बाहर निकाला भी नहीं था कि पलट कर क्या देखता हूँ, पिताजी खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा, बेटा किस्मत साथ दे रही है क्या? मेरी तो किस्मत उन्हें देखते ही खराब हो गई थी। मैंने उनसे क्षमा याचना की कि मैंने गलत किया है, परंतु प्रभु की कृपा थी कि वह उस दिन बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा, मैं तेरे और बहन के लिए टॉफी लेकर के आया हूं, जाओ आपस में बांट लेना। मैं तुझे देना तो नहीं चाहता था परंतु अब सोचता हूं कि तुझे दे दूं। मैंने उनकी भलाई का और पुत्र होने का अनुचित लाभ उठाया और आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि अब मेरे पास मेरा स्वर्गीय पिता है और मैं उससे अनुग्रह की भीख मांगता हूं। चूक जाने पर मैं पहले के समान उससे दूर नहीं भागता हूं। मेरा अनुभव है कि जब मैं अपने प्रभु से दूर होता हूँ तब उसकी मार दुखदाई होती है। मैं उसकी बेंत के सिरे पर रहना नहीं चाहता क्योंकि उससे अधिक चोट लगती है, और मैं जितना उसके निकट होता हूँ उतनी ही कम चोट लगती है। मैं अपने स्वर्गीय पिता का पुत्र हूँ क्योंकि वह मेरा उद्धार करता है। यह कैसा उत्तम अलंकार है। मेरे प्रियो, जब मैं विश्वासियों को कहते हुए सुनता हूँ मैं यह नहीं करता, मैं वह नहीं करता, मैं तो नियमों का पालन करता हूँ, तब मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि वे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बहुत कम जानते हैं। वे अपने बल पर मसीही जीवन जीना चाहते हैं। पौलुस कहता है, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। पौलुस भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंतित रहता था। वह वैसे ही चिंता कर रहा था जैसे हम अपनी सेवा के अंत में चिंतित होने लगते हैं कि अन्य प्रचारक आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे और शिक्षा देंगे। कभी कभी हम में एलिय्याह की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मैं भी एक बार सेवा काल में एलिय्याह की नाई पुकार उठा था, हे प्रभु मैं अकेला ही रह गया हूं। परंतु मैंने देखा कि वह सच नहीं है। मैंने देखा कि परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व में अति उत्तम युवा प्रचारक उत्पन्न किए हैं जो परमेश्वर की बातों के लिए खड़े रहते हैं। हम जो प्रतिदिन उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, यह वास्तव में चिंता का विषय है कि ऐसे युवक हों जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने में विश्वास योग्य हों। यही कारण था कि पौलुस तीमुथियुस से अनुरोध कर रहा था कि वह उसकी शिक्षाओं को विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। परमेश्वर ऐसे मनुष्यों को तैयार करेगा जिन्हें शिक्षा देने का वरदान प्राप्त हो। वह आज भी ऐसा ही करता है। वह चाहता है कि नव युवक परमेश्वर को ग्रहण करें और उसकी सेवा के लिए सामने आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हर एक मनुष्य तक पहुंचे। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें अपने पिता का काम करना है। प्रभु यीशु तो बालक ही था जब उसने कहा था लुकार्चित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 49 पद में, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में अर्थात घर में होना आवश्यक है। मैं यीशु के तुल्य तो पुत्र नहीं हूँ, परंतु उसमें विश्वास के द्वारा निश्चय ही परमेश्वर की संतान हूँ। 1:12 में यूहन्ना कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे मित्रों, यह सबके लिए है। इस संसार में जितने भी मानव जाति हैं सबके लिए है कि जितनों ने अर्थात जो कोई भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान बना लिया। अब क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं इसलिए मुझे अपने पिता के काम को करना है। प्रसंगवश, क्या आप अपने पिता के काम में रुचि रखते हैं? हमारा मुख्य काम है परमेश्वर के वचन का प्रसारण, परंतु हमें यह समझना है कि हमें परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और यही नहीं, अपने जीवन के हर एक पक्ष में हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आप शायद सोचते हैं कि आप अपने आप से निराश हैं। यदि ऐसा है तो निश्चय ही आपने अपने ऊपर भरोसा रखा है जो आपको नहीं करना था। आपको परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है। हम विश्वास से चलते हैं, आंखों से देखकर नहीं। शायद आप हताश हैं। यदि ऐसा है तो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। आशीष के मार्ग पर विश्वास नहीं करते हैं। आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आप अपने आप सब कुछ कर लेंगे, परंतु आप हताश हो गए हैं। या आप कह रहे होंगे, मुझे आशा है कि मैं भविष्य में अधिक अच्छा कर पाऊंगा। उसके पश्चात आप अपने पुराने स्वभाव से कुछ अच्छा उभरने की अपेक्षा करते हैं। ओह मेरे मित्रों, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। जी हाँ, उस अनुग्रह को आप प्राप्त करेंगे तो निश्चय ही आप बलवंत होते जाएंगे। आपको अपने से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तब वह कहता है, अच्छा योद्धा। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 2:3-4 में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, विश्वासी एक अच्छा योद्धा है। परमेश्वर की संतान एक अच्छा योद्धा कैसे हो? इफिसियों की कलीसिया को लिखे पत्र के अंत में पौलुस कहता है कि विश्वासी आत्मिक युद्ध कर रहा है और उसे परमेश्वर के हथियार बांधना है। इफिसियों की पत्री 6:12-13 में पौलुस लिखता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। आप कल्पना कीजिए कि युद्ध के मैदान में एक सैनिक अपने कप्तान के पास जाकर कहे, सर मुझे क्षमा करना, मुझे शहर में एक अति आवश्यक काम है, उसके बाद मुझे अपनी मंगेतर के साथ रात का खाना खाने के लिए जाना है, इसलिए मैं आज इस युद्ध में नहीं रहूंगा। आज बहुत से विश्वासी ऐसा ही युद्ध कर रहे हैं, या कहूं कि लड़ रहे हैं। अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वासी को अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करना है, उसे कठिन एवं कठोर परिस्थितियों को भी झेलना है, जैसे पौलुस कष्ट उठा रहा है। कुछ लोग इस पद के आधार पर कहते हैं कि विश्वासी को विवाह नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, पौलुस ब्रह्मचार्य की बात नहीं कर रहा है। उसके कहने का अर्थ है कि विश्वासी संसार में ऐसे फंस जाते हैं कि वे मसीही जीवन जीने में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि आप संसार में ना फंसे, परंतु परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाएं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार एक महिला ने मुझसे कहा, कल जब आपने मसीह यीशु को ग्रहण करने की पुकार की तब मैं आराधना में ही थी। मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण तो किया, परंतु आगे नहीं आई। मैं इसका मुख्य कारण आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पति की हाल ही में मृत्यु हुई है और उसने शराब की 4 दुकानें मेरी देखरेख में छोड़ दी है। मैं आपको इसलिए फोन कर रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं उस व्यवसाय को समाप्त कर दूं। आप कहें तो मैं सब बोतलों को तोड़ देती हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मेरे मित्रों, यदि आप होते तो उसे क्या सुझाव देते? मैंने जो उससे कहा वह यह था, आप बोतलें तोड़कर तो शराब का व्यवसाय समाप्त नहीं कर पाएंगे और फिर वह आपकी एकमात्र आमदनी है। मेरा सुझाव तो यह है कि आप उसे बेचकर बाहर आ जाएं। इस प्रकार हम इस जीवन के कार्यकलाप में फंसने से बच जाते हैं। परमेश्वर की संतान को यह बोध होना है कि वह एक योद्धा है, और मसीही जीवन खेल का मैदान नहीं है, यह युद्ध क्षेत्र है जहां युद्ध जीते जाते हैं और हारे भी जाते हैं। एक वास्तविक आत्मिक युद्ध चल रहा है। मेरे मित्रों, यहां पर जब मैं बार बार युद्ध की बातें कह रहा हूं, यहां पर संसार की युद्ध की बातें नहीं है, शारीरिक युद्ध की बातें नहीं है, परंतु हम इस संसार में शैतान के उन अंधकार के शक्तियों से लड़ते हैं, और इसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को गंभीरता से और स्थिरता से थामना है, ताकि हम उस वचन के द्वारा से आगे की ओर बढ़ सकें। अब हम देखेंगे खिलाड़ी। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2:5 में लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। यहाँ पर पौलुस एक विश्वासी की तुलना खिलाड़ी अर्थात पहलवान से करता है। वह जीतने का भरसक प्रयास करता है। किसी ने संक्षेप में कहा है, कुछ विश्वासियों का अभ्यास है अर्थ निकालना। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने ही मित्रों को गिराने का कोशिश करते हैं, उत्तरदायित्वों से बचना और किस्मत अजमाना। पौलुस ऐसे अभ्यास की बातें यहां पर नहीं कर रहा है। उसने मसीही जीवन को दौड़ या स्पर्धा कहा है। फिलिपियों की पत्री 3:14 में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस अपनी देह को वश में रखने के बारे में भी कहता है। देखिए 1 कुरिन्थियों की पत्री 9:24-27 में, मेरे मित्रों, पौलुस का लक्ष्य था कि वह अपनी मसीही दौड़ को ऐसे दौड़े कि अंतिम रेखा पर खड़ा प्रभु यीशु उसे मुकुट पहनाए और कहे, मत्तियुस सुसमाचार 25:21 के अनुसार, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। परमेश्वर की संतान को यत्न करना है। जी हाँ, परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह दौड़ जीते। हर एक विश्वासी को दौड़ जीतना है। परमेश्वर के प्रत्येक संतान को यह समझ लेना है कि वह इस संसार में एक दौड़ में है, एक रेस में है, जिसे उसे जीतना है। आगे कहता है, उसे विधि के अनुसार लड़ना है, अर्थात उसे नियमों का पालन भी करना है। मसीही जीवन जीने के छोटे मार्ग नहीं है। उन युक्तियों को आप भूल जाएं जो छोटे छोटे नियम निर्देश बनाकर मसीही जीवन को एक छोटा मार्ग बनाती हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमें 66 पुस्तकें दी हैं। उनमें से प्रत्येक पुस्तक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा जानने के लिए हमें समग्र परिदृश्य को देखना होगा। हमें संपूर्ण बाइबल पढ़ना है। धावक पथ के कोने से नहीं निकल पाता है। परमेश्वर के संतान को अपने पथ पर ही दौड़ना पड़ता है। विजयी होने के लिए आप छोटा सा मार्ग नहीं पकड़ सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि आप शॉर्टकट या सकरा मार्ग से वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां एक नियुक्त स्थान रखा गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सब के लिए एक मार्ग तैयार किया है, और वह चाहता है कि हम इस संसार में उसे ग्रहण करें, उसके संतान बने और पापों से छुटकारा पाएं, उद्धार पाएं, और इसके साथ साथ हम अपनी दौड़ में, एक विश्वासी की दौड़ में, एक मसीही जीवन की दौड़ में नियम का पालन करते हुए दौड़ें, जिस प्रकार से खेल के नियम होते हैं और उसी के अधीन खिलाड़ी को रहना पड़ता है। आज हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें भी परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को जीना है। पौलुस यही कहता है कि हम हर एक विश्वासी विजयी हों, ताकि उस मुकुट को प्राप्त करें जिसे परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हर एक विश्वासी के लिए इनाम के रूप में रखा है। पौलुस यह भी कहता है कि उसने वह दौड़ पूरी कर ली है। क्या आज आप उस दौड़ को एक नियम के अनुसार दौड़ रहे हैं? या आप संसार के साथ मिलकर के दौड़ रहे हैं? यदि ऐसा है तो आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार दे चलो। जीवन